ओम शांति। दिव्यता की किरणें फैलाते हुए पवित्रता और निर्मलता का फरिश्ता, शांति का दूत आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई और दीदी का लौकिक जन्म 1935 में, एक वर्ष पूर्व बाबा ने आपको भेज दिया। मुंबई महानगरी से ही आप निकले हैं ईश्वर के अनमोल रतन, और वहीं पर ही आपका अलौकिक जन्म हुआ। मम्मा बाबा की पालना ली और ज्ञान में चल पड़े। जब ज्ञान मिला उस समय आपने 1962 में अपनी मेडिकल स्टडीज जस्ट पूरी की थी और बाबा का ज्ञान मिला। फिर तो मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों आप सिखाते रहे बाबा की आज्ञा से, या यूं कहे बाबा के कहने पर ही आपको आपके पिताजी ने दहेज में सेवा केंद्र दिया, और सेवा केंद्र के माध्यम से, क्लिनिक के माध्यम से आपने मानवता की दोनों ही प्रकार से सेवा की, तन और मन की। और सेवा करते करते 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा अर्थ सेलेक्ट किया, और फिर 71 से 78 तक विदेश की धरनी पर अनेकानेक स्थानों पर रहकर सेवाओं का विस्तार किया। सबसे पहले तो आप लंदन गए, उसके बाद विदेश के अनेक भागों में जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, फिजी आदि आदि कई स्थानों पर जाकर आपने बाबा की सेवाओं की स्थापना की, शुरुआत की, बाबा के बच्चे निकाले। और 78 में आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया। तो 78 से लेकर 2008 तक सिडनी में रह करके आपने एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का विस्तार किया, जिस रीजन के अंतर्गत आज की डेट में करीब 18-19 देश आते हैं। इन 18-19 देश में बाबा के सेवा केंद्र हैं, बाबा के बच्चे हैं, प्रतिवर्ष मधुबन में आते हैं। तो वर्तमान में हम कहेंगे आप एशिया पैसिफिक रीजन के कोऑर्डिनेटर हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर। और फिर 2009 में बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर में बुलाकर ज्ञान सरोवर अकेडमी का डायरेक्टर पद का भी कार्यभार संभाला। तो आप डायरेक्टर हैं ज्ञान सरोवर अकेडमी के। और जैसे जैसे दादियां अव्यक्त होती चली गईं, आपके कंधों पर और एक जिम्मेवारी आई। आप वर्तमान में यज्ञ के संस्था के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। तो जैसे जैसे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही यज्ञ की जिम्मेवारियां आपके कंधों पर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन वैसे वैसे आपकी उपराम स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। जितना ही आप बिजी रहते हैं, उतना ही साथ साथ में आप इजी भी रहते हैं, और बहुत कम शब्दों में काम निपटा लेते हैं। बहुत कम शब्दों में बाबा के गुह्य रहस्य समझा देते हैं। तो ऐसी मितभाषी निर्मलता की मूरत दीदी हम सबके बीच में विराजमान हैं। आज उनके अनुभव से हम सुनेंगे, शूद्र सो ब्राह्मण सो फरिश्ता क्या होता है। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मामा ने हमें अपनाया, पढ़ाई सिखाकर हम जो शूद्र थे, बाबा ने पहले ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण बनाकर फिर फरिश्ता। बाबा गाइडेंस देते रहे, बच्चों का काम है फॉलो करना। तो बाबा चाहता है हर एक बच्चा विश्व का मालिक बने। बच्चे नंबर वार है और वहां भी नंबर वार पद मिलेगा। जो बच्चे बनते हैं सत्युग त्रेता में तो आएंगे, पोजीशन नंबर वार है। कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा, कोई शाहूकार, कोई प्रजा के नौकर बनेगा। तो स्टूडेंट का क्या लक्ष्य रहेगा? स्टूडेंट का हमेशा लक्ष्य रहेगा कि हम पास विद ऑनर हो जाएं और आठ नंबर में आए या 108 में आवे या 16108 में आवे, ये जरूर लक्ष्य रहेगा। तो आज हम देखें कि शूद्र के संस्कार कौन से हैं, ब्राह्मण के और फरिश्ते के, और कैसे हम अभी ब्राह्मण से फरिश्ते बने। शूद्रों का बोलना रफ डफ होता है, बड़े आवाज से और जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। उनका व्यर्थ चिंतन चलता है, पर चिंतन चलता है, पर दर्शन करते हैं झरमुई झंगमुई, जोर से हंसना। चलन फास्ट दौड़ना, चप्पल का शोर करना, दूर से ही मालूम पड़ जाता है कि वो आता। खान पान जो भी आया स्वाद के वश, स्वाद के अर्थ खाएंगे। नियमित नहीं, जब भी ऑफर मिले स्वास्थ्य का ख्याल ना रख, खा लेते हैं। विदेश में जाते हैं तो अपने को वेस्टर्न समझाने के लिए शराब, सिगरेट, डांस आदि ग्रहण करेंगे, ड्रग्स भी लेंगे। ड्रेस मर्यादा की नहीं, फैशन। एक्टर एक्ट्रेस को कॉपी करेंगे, उनके जैसा बोल बोल चाल एक्ट करेंगे, सोएंगे देरी से, उठेंगे देरी से, और उठकर पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या कई लोगों को तो बेड में ही चाय चाहिए, सिगरेट शराब आदि। संबंध के मोह में फंसे रहेंगे, लोभस, चोरी, ठगी, झूठ आदि करेंगे। दृष्टि वृत्ति खराब होंगी, चेहरा कभी उदास कभी खुश, मूड ऑफ, मूड बदलता रहेगा, गुस्सा आएगा, रूठ जाएंगे, और चेहरा जल्दी बिगाड़ते हैं, हाव भाव बदलते हैं, आंख मिचौले करते हैं, चेहरे में तेज नहीं, आर्टिफिशियल मेकअप, और उसमें धन, समय, शक्ति वेस्ट करते हैं मेकअप करते हैं। तो ब्राह्मण पुरुषार्थी है, पर कभी कभी शूद्रों की चाल चल लेते हैं, इसलिए चेक करना है क्या हमारे में पुराने संस्कार तो नहीं है। पुराने संस्कार निकाल रहे हैं, क्योंकि तमो से रजो से सतो बनना है। फरिश्ता बनने के लिए अटेंशन रखना है, अपनी चेकिंग करनी है, और दृढ़ता से परिवर्तन लाना है। योग तपस्या से हम शक्तिमान बनते हैं। ज्ञान को धारण करना है, सत्संग करना है, बाप दादा और बीकेस का संग रखना है, और अपने पर ज्ञान का रंग लगाना है। तो पहले अपने कर्मों को बदलना है, बाद में बोल और संकल्प को भी बदलना है, और बहानेबाजी नहीं करनी है, अलबेला पढ़ना हो। फरिश्तों के क्या लक्षण होते हैं? साकारी होते भी अव्यक्त अशरीरी, नैनों में रूहानियत, और नैनों द्वारा तीन लोक का साक्षात्कार कराए। चेहरा पवित्रता और योग से चेहरे पर चमक होंगे, सुंदरता होंगी और आकर्षित करेंगे। तो चाहे सफेद ड्रेस पहना हो चाहे नहीं, परंतु लोग समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी है। एक बहन अमेरिका से आई थी, उसने बैज नहीं पहना था न सफेद ड्रेस पहना था, पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो ऑफिसर था चेकिंग करता था माल, कहता है ओम शांति है। उसको डर था कि पहचानेगा नहीं तो सामान चेक करेगा आदि आदि। उनका बोल मीठा अमूल्य, ज्ञान रत्नों से औरों की झोली भरेंगे, शक्ति गुण वरदानों की वर्षा करेंगे। दाता वरदाता के रूप में उनका गायन पूजन है। बाबा दाता तो है, दाता के बच्चे हम भी दाता। तो जितना खजाना जमा करेंगे उतना औरों को देंगे। सर्व आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करेंगे। सदैव खुशी में नाचते रहेंगे। उनकी अवस्था एक रस, एक से ही सर्व संबंध। कर्म करते भी धरती से परे, कर्मयोगी स्थिति। संबंधों में रहते हैं क्योंकि बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, तो संबंध में तो रहते हैं, पर न्यारे और प्यारे, लौकिक से भी अलौकिक संबंध। अपने को अवतरित आत्मा समझते हैं, शक्ति अवतार, डबल लाइट, कोई बोझा नहीं। जिम्मेवार होते भी अपने को निमित्त समझते हैं तो लाइट रह सकते हैं। सदा श्रीमत पर चलेंगे, कभी मन मत पर मत नहीं। जीवन अपना अमानत समझेंगे, अपनापन नहीं। तन मन धन सब भावक कर, सर्व त्यागी, पुराने भाव स्वभाव संस्कार का अंश मात्र नहीं। व्यक्ति वस्तु वैभव का कोई आकर्षण नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान, कमजोरी की बात नहीं, कोई भी बात मुश्किल नहीं, कोई प्रश्न नहीं क्या करूं कैसे करूं आदि आदि। योग अग्नि से अपनी कमजोरियां उन्होंने खत्म कर दी है। तो फरिश्ता बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और सबसे पहले तो देही अभिमानी बनना है। बाबा के लिए बहुत प्यार और लगन, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा से सर्व संबंध और एक बल एक भरोसा। अपने देश से भी नष्ट मोह, देहधारियों से और अपने वस्तु वैभव से भी न्यारा। एकांत प्रिय, एकाग्रता रहे थे, एक नामी, इकोनॉमी, समय दान शक्ति की वैल्यू होने के कारण बचत करेंगे इकोनॉमी। संपूर्ण पवित्रता, दृढ़ता कि मुझे बनना ही है, बहानेबाजी नहीं, इस कारण उस कारण आदि आदि। और लक्ष्य रखता है बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ सेवा करनी है, बाबा के साथ चलना हो, समान बनना हो। तो इसलिए सहज नेचुरल निरंतर योगी आत्मा हूँ। बुद्धि उनकी स्थूल नहीं, फरिश्तों को दिखाते हैं, उनको दो पंख होती है, उमंग उत्साह की पंख, और हमेशा उड़ता और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है ऐसे वो भी निर्दोष पवित्र है। नॉलेजफुल, फेथफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, तो अभी समय है कि हम पावरफुल शक्ति रूप बने और समय पर शीतला, समय पर काली, विकारों को काली ने भस्म किया, दिनचर्या ठीक अमृत वेले से बाबा के कहने अनुसार अमृत वेला पावरफुल, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामना और उन्हों का वो एक एग्जाम्पल बन जाते हैं औरों को भी ऊंचा उठाने के लिए। फरिश्ता सब का उनसे रिश्ता है, परंतु किसी से मोह का रिश्ता नहीं। फरिश्तों को कहते हैं ईश्वर का मैसेंजर, नेक्स्ट गॉड, ईश्वर के बाद दूसरा स्थान। तो अनादि आदि रूप और संस्कार उनमें इनमर्ज रूप में होता है, निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, सर्व के प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। तो हमें स्व परिवर्तन के लिए लक्ष्य रखना है कि मुझे फरिश्ता से देवता बनना है और सोचना बोलना करना एक ऐसे नहीं, बड़े बड़े प्लान बनावे, सबको बतावे कि तो हमारा प्लान है और करने समय बहाना बताए कि सहयोग नहीं मिलता, ये है वो है। तो बाबा बच्चों का रिजल्ट बताते हैं कि सोचने में 75%, नहीं सोचने में बहुत फास्ट, बोलने में 75% पर करने में कम मार्क्स। समस्या आएंगे, विघ्न आएंगे, परंतु कारण को निवारण करना, नशा रहे, और हमारी भाषा में लेकिन शब्द ना हो, करना तो था लेकिन ये हो गया, बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, स्वभाव ही मेरा ऐसा है, संस्कार ऐसा है। तो अवगुण या कमजोरी को अपना संस्कार मत बनाओ, गुणों को ही संस्कार बनाओ। कूट कूट कर अपना संस्कार बनाऊं। रावण की जायदाद को अपना संस्कार मत बनाओ। जो अच्छा लगता है उसके बाद दिल में समा लो। कभी कभी कोई बोलता है, हमारा करेक्शन देता है, तो थोड़ा दुख होता है, परंतु हमें वो काम में लगेगी सलाह। इसलिए सलाह को ठुकराओ मत। ब्राह्मण लाइफ में सबसे ज्यादा बाधा आती है पवित्रता की पालना में, परंतु कोई भी हालत में पवित्र जरूर रहना है, सहन करना पड़ता है, मारपीट भी सहन करनी पड़ती है और क्रिटिसिज्म, हंसी, कोई हंसते हैं कि ये क्या, कोई कहेंगे अच्छा सवेरे हुआ सफेद कपड़े पहनकर चली, बच्चों का ख्याल नहीं, घर वालों का ख्याल नहीं, चल पड़ी। तो बोलने वाले तो बोलेंगे, परंतु हमें लोकलाज की लोकलाज की परवाह नहीं करनी है, अपनी मर्यादाओं पर चलना है। विकार तो जीतना है, परंतु बाबा कहते हैं क्रोध भी कम नहीं, रोप भी कम नहीं, और क्रोध का रूप सूक्ष्म रूप है चिड़चिड़ापन, क्रोध का और रूप है कि उसके सामने नहीं देखेंगे, आंख नहीं मिलाएंगे और देखेंगे वो यहां से आता है वो वहां से चला जाएगा, कि सामने मिले तो शांति हेलो करना पड़े ना। क्या है, एक विकार को जरा भी हम छुट्टी देंगे तो दूसरे भी आते रहेंगे। देहभान तो मूल है, बाबा से दया कृपा नहीं मांगनी है, बाबा ज्ञान देंगे। बाबा कहता है मैं तो टीचर हूँ, टीचर कोई कृपा थोड़ी करता है, आशीर्वाद थोड़ी करेगा। इसलिए बाबा का गाइडेंस ली मत, उस पर चलो। खुद को देखना है, औरों को नहीं देखना है। देखो तो मम्मा पापा को देखो और उसको फॉलो करो। क्या है नहीं तो कोई कहे हाँ देखो फलाना तो 15 साल से ज्ञान में है अभी भी उसको गुस्सा आता है, मैं तो नहीं हूं ना। और महारथियों की विशेषता देखो, कमी मत देखो, सब पुरुषार्थ की है, कमी नहीं देखो। तो अंतर्मुखी बनकर अपने आप को चेक करना है कि मेरे में क्या कमी कमजोरी है, क्या अवगुण है, क्या गुण धारण करना है। औरों की अच्छाई से रेस करो, ये हमारी रेस है, ह्यूमन रेस। तो योग और दृढ़ता द्वारा अपना परिवर्तन करो, क्योंकि जब लक्ष्य होगा कि मुझे फरिश्ता सो देवता बनना ही है, तो क्या है इतना तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है। और योग के सिवाय हम पास्ट के विकर्म भस्म नहीं कर सकते, तो अमृत वेला भी बीज रूप स्थिति रखो जिससे विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति।
बहुत सुंदर दीदी ने अपने अनुभव से हमें लाभान्वित किया। पुनः पुनः दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और आपके लिए खुशखबरी, खुली मार्जिन है आप सभी को, आप चाहे जो प्रश्न पूछना चाहे दीदी से पूछ सकते हैं, योग से भी रिलेटेड, चाहे ज्ञान से, सेवा से, धारणा से, चाहे उनके अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव से, इस देश के अनुभव या विदेश के अनुभव, जो चाहे आप पूछ सकते हैं। जो उठे सो अर्जुन, कौन पहले उठेगा? हाँ, भरपूर है, कोई प्रश्न नहीं है जी? हाँ जी, आइए इधर।
ओम शांति। ये ना मुझे काफी समय से हमेशा इसके कौतूहल रहा है। प्रश्न ऐसे था, क्योंकि दीदी जी आपका देश विदेश में भी सेवा इतनी हुई है, तो इसका उत्तर शायद आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। ऐसे कुछ हुआ है, मतलब हमारी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, मे भी सबको ऐसे लगता है कि एक जो अध्यात्म का जो लेवल है, या तो फिर बाबा के ज्ञान की धारणा का जो लेवल है, वो विदेशी और अपने देशी दोनों तरफ के लोगों में देखेंगे तो अंतर कितना हो सकता है? मतलब कौन सा बोलू तो कौन सा विदेशी बुद्धि आसानी से ले लेती है ज्ञान, कि वो बहुत ज्यादा सोचती है चीजों पे, मुझे वो अंतर समझना था।
दीदी क्लियर हुआ? विदेश वाले भाई बहने ज्ञान को इजीली लेते हैं या बहुत तर्क चलाते हैं, या भारत वाले ज्यादा तर्क चलाते हैं?
विदेशी तर्क तो ज्यादा चलाते हैं,
पर जब अनुभव होता है ना, तो फिर क्या करते हैं, फौरन अमल में लाते हैं। भारत वाले क्या है, धीरे 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 चलेंगे। कभी कभी प्याज लहसुन छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और खास भारत में तो क्या है, खान पान के परहेज मुश्किल। मित्र संबंधी माँ बाप के पास जाते हैं तो मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए खा लेते हैं। विदेशी एक बार निश्चय हुआ, फिर नहीं। हमारे पास लंदन में एक भाई था, एक मास का स्टूडेंट। मैंने पूछा कभी रेस्टोरेंट में सैंडविच वगैरह वेजिटेरियन खाने जाते हो? कहता बहन जी कैसे बात करती है, रेस्टोरेंट में कैसा वाइब्रेशन होता है, मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक भाई था, 9 बजे उठकर 10 बजे कोर्स करने आता था। 7 दिन के बाद पूछता है अभी क्या? मैंने कहा अभी तो हमारी मुरली 5:30 बजे योग, 6 बजे से मुरली होती है। तो 8वें दिन से आने लगा 5:30 बजे।
क्लियर हो गया आप सभी को कि तर्क कौन चलाता है और धारणा में कौन लाता है? और किसी का कोई प्रश्न?
ओम शांति। बाबा बोलते हैं कि सफलता मूर्त बनना है तो सफल करो, तो ज्ञान गुण शक्ति या खजाने सफल करना है, तो इसको हम कैसे प्रैक्टिकल में लाए कि सफल, अभी ज्ञान को सफल करना है तो जीवन में उसको सफलता कैसे ला सकते हैं, वैसे गुण और शक्तियां।
ज्ञान गुण शक्तियां जो भी बाबा हमें देते हैं, इसको कैसे सफल करें? धन तो पता चलता है कैसे सफल करें कि बाबा के कार्य में लगाए, लेकिन बाबा ने ही जो ज्ञान गुण और शक्तियां दी है उसको कैसे सफल करना है?
सफल ऐसे करना है कि जो ज्ञान समझा है औरों को समझाना है, औरों को ब्राह्मण बनाना है, औरों को बाबा से कैसे शक्ति लेनी है वो सिखाना है। नेचुरली है कि सफलता मिलेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ज्ञान में योग का यदि साथ साथ है तो तीर लगेगा। सिर्फ ज्ञान में, योग भी साथ में होना चाहिए, तो क्या होगा, औरों को तीर लगेगा। और उसमें भी जो धारणा की है, तो हम एग्जाम्पल बन जाते हैं, क्योंकि विदेश में क्या है कि उन्होंने एकदम परिवर्तन किया, जो हिप्पी थे, हिप्पी माना 70s में क्या था, विदेशी घूमते रहते थे, कोई खाने का नियम नहीं, कोई सोने का नियम नहीं, स्नान पानी का नियम नहीं और चट्टी वाले कपड़े पहनते थे। बाल भाई लोग भी इतने बड़े बनाते थे तो कोर्स के बाद जब निश्चय हुआ तो उन्होंने बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। कुर्ता पैजामा पहन कर घूमने लगे, बाल कट कर दिया और चेहरा चमकने लगा। तो फिर क्या करते थे, अपने मित्रों के पास जाकर ज्ञान देते थे और इस कारण फैलाव करना सहज। जैसे यहाँ घर से एक आता है, दूसरों को भी ले आता है, परिवार के परिवार आ जाते हैं, ऐसे वहाँ फ्रेंड्स को प्रभावित करते हैं। और शुरू शुरू में वो यंग लोग होते हैं, उमंग उत्साह इतना था, जो सेंटर खोलते रहे और वहाँ तो भाई भी सेंटर खोल सकते थे और सकते हैं अभी भी। सारा ऑस्ट्रेलिया चार्ली एक भाई संभालता है, मलेशिया में भी लच्छुबा एक भाई संभालता है। तो क्या है कि भाई लोग भी सरेंडर होते हैं और एक भाई को देख दूसरे भाई भी आ जाते हैं।
बहुत सुंदर क्लैरिटी मिल गई ज्ञान गुण शक्तियां कैसे सफल करें। आएंगे इधर।
दीदी मुझे पूछना है, 13 तारीख की मुरली में था कि बुद्धि बहुत साल हो जाते हैं ज्ञान में फिर भी बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ जाती है, तो उसमें कहा था बाबा ने कि बुद्धि से नहीं भूला है, इसके लिए बार बार बुद्धि पुरानी दुनिया में जाती है। तो हम कैसे माना, बुद्धि सब कर तो लेते हैं लेकिन कभी कभी बुद्धि जाती है पुरानी दुनिया में, तो वो हम बुद्धि को कैसे करें, मतलब क्योंकि एक एग्जाम्पल भी दिया जैसे विश्वामित्र का, 12 साल के बाद में इनका एकाई और तपस्या भंग हो गई। तो मतलब जब तक हम बुद्धि पुरानी दुनिया से नहीं निकालते हैं तो फिर भी उसके लिए कुछ ऐसा कैसे करें, मतलब बार बार जाती तो है बीच बीच में। 13 तारीख की मुरली में था।
वर्षों तक ज्ञान में चलते हैं दीदी, लेकिन बार बार बुद्धि भगवान की तरफ लगने के बजाय संसार की तरफ भटक जाती है, तो उसको कैसे वापस लेकर आए, वो भटके नहीं।
वह कहते हैं बुद्धि को बिजी रखो, या तो कर्मयोग में बिजी रखो या तो ज्ञान योग में। मुरली रिवाइज करो, मंथन करो, स्वदर्शन कप चक्र घुमाओ। यदि बुद्धि बिजी है ज्ञान में तो कहाँ दुनिया में जाएंगी, जब फ्री होती है तो दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया में। और पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य हो, क्योंकि मालूम है पुरानी दुनिया के सुख क्या है, नई दुनिया क्या है। तो इसलिए पुरानी दुनिया में कुछ है नहीं। ब्रह्मा बाबा को हम बुलाते थे ना, हम कहते थे बाबा बम्बई आओ, दिल्ली आओ। बाबा कहते थे क्या है, नाटो का जंगल, बंदर रहते हैं, आकर क्या करूं मैं। फिर भी सर्विस के लिए बड़े बड़े शहर में आते थे, सर्विस के लिए, दुनिया देखने के लिए नहीं। क्योंकि आजकल क्या होता है, समझते हैं लंदन भी जाएं, अमेरिका भी जाएं, आदि आदि। परंतु वहाँ क्या रखा है तो इसलिए मामा युक्ति बताते हैं कि बुद्धि को बिजी रखो, वैराग्य होगा तो तपस्या सहज हो जाएंगी।
एक लास्ट क्वेश्चन,
हम शांति दीदी, हमारे जीवन में धारणा में यूनिफॉर्म का बहुत महत्व है, लेकिन हम लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, तो हम लोग नॉर्मल कपड़े भी पहन लेते हैं, जैसे रंगीन ड्रेसेस। तो अगर हम नहीं पहनते हैं व्हाइट ड्रेसेस घर में, खाली हम जब सेंटर जाते आते पहनते हैं, तो उसका हमारे ही जीवन में क्या असर होता है, मतलब हम नहीं पहनते हैं तो, उसके बारे में थोड़ा सा।
कपड़े का प्रश्न है, अगर यूनिफॉर्म में सदा नहीं रहते हैं तो क्या होगा?
दुनिया में रहते हैं तो बाबा भी कहते हैं सिर्फ क्लास में यूनिफॉर्म पहनो, सफेद कपड़े, बाकी तो घर में कलर्ड कपड़े पहन सकते हैं, नहीं तो गंदे भी हो जाएंगे और दुनिया वाले भी कहेंगे ये क्या है। इसलिए कोई हर्जा नहीं कपड़ा क्या पहनते हैं, लेकिन मन में ये याद रहे कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम योगी हैं, तपस्वी हैं। मन की स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्शन न हो, क्योंकि कलर्ड कपड़े पहनने में क्या होता है, कई बार हमारी बुद्धि शॉक्स में जाएंगी, क्या कलर फैशन है, क्या लोग पहनते हैं। आजकल तो नई नई फैशन के लहंगे वगैरह बनाते हैं, तो बुद्धि जाती है और दिल भी होती है कि हम नया फैशन पहने। तो इसलिए बाबा मना करते हैं, बाकी पहनने में कोई हर्जा नहीं है।
आ जाइए, आप भी क्लियर हुआ माता जी?
दीदी जी, चार्ट कंटिन्यूअस लिखने के लिए एक मोटिवेशन लगता है, चार दिन तक रहता है फिर वो चला जाता है, तो वो मोटिवेशन हम कैसे लाए?
शुरू शुरू में उमंग रहता है तो चार्ट लिखते हैं, पर जैसे पुराने होते हैं वैसे लाइफ भी बिजी है, इसलिए चार्ट लिखना मोटिवेशन नहीं रहता है।
तो इसलिए कम से कम रात को सोने के पहले अपना चार्ट देखो कि दिन में हमने कोई पाप तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। कम से कम ये अपने आप को चेक करो।
बहुत अच्छा, बस समय हो चुका है और पूरी भट्टी ही इसी के लिए है, चेक एंड चेंज। तो आज शाम का 5 से 6 बजे आपको यही करना है, बैठ के एकांत में भीतर की चेकिंग, अन्यथा चेंज करने का सवाल ही नहीं उठेगा, है ना? तो बहुत अच्छे प्रश्न के साथ ये सत्र पूरा हो रहा है। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार भाई बहने क्लासेस सुनते हैं सबकी और फिर कहते हैं हमें ना दीदी से मिलना है। हम उनसे पूछते कुछ काम है क्या आपको दीदी से, क्यों मिलना है? नहीं, पर्सनल उनसे सुनना है, इतना तो ज्ञान सुन के आया अभी। नहीं नहीं, दीदी के मुख से सुनना है, मेरे लिए पर्सनल क्या पुरुषार्थ मुझे करना है। तो सबको लगा दीदी ने बैठ के आपको जो भी सुनाया, क्योंकि अपने अनुभव से सुनाया है, उन्होंने अपने उस जीवन में जो बातें बताई है अपने जीवन में उतारी हुई है, तो सबको ऐसा लगा दीदी ने हमको जो कुछ कहा जैसे पर्सनल गाइडेंस मिल रही है। हाँ, तो ऐसे तो दीदी का मिलना मुश्किल है, और इसीलिए हम दीदी को कहते दीदी आप जरूर आइए, सबको पालना मिले आपकी आज, क्योंकि दादियां तो है नहीं हमारे पास, लेकिन जिन्होंने दादियों की, बाबा की, मम्मा की पालना लेके अपने जीवन को आदर्श रूप दिया है, उनके संग 1 घंटा बैठना ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा, है ना? तो दीदी हमारे लिए समय निकल कर आए, उसके लिए भी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब योग में बैठेंगे और फिर योग के बाद शशि दीदी आपको कुछ डायरेक्शन देंगे, सॉरी शकु दीदी।